ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के समक्ष बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढ़ी गुजर जाती है, इसी कारण आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया था। भाजपा आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके इस अभियान की शुरूआत करेंगे। यह अभियान 10 नवंबर तक कई चरणों में चलाया जाएगा। इस सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को समाप्त होगा। कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल के जरिए या पार्टी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सदस्यता ले सकता है। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। सरकार ने 19 जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव से स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित निवासियों को हर जरूरी सरकारी सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए दोनों राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल का गठन किया है। ये दल जल्द ही राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 157 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का रेल बजट 18 गुना बढ़ा दिया गया है। श्री वैष्णव कल पीलीभीत मैलानी के बीच ट्रेन संचालन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी महीने के 1,59,000 करोड़ रुपए की तुलना में 10% अधिक है। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड समायोजित करने से पहले केंद्र सरकार ने 30,862 करोड़ रुपए और राज्यों ने 38,411 करोड़ रुपए एकत्र किए। आयात और अंतर राज्य बिक्री पर एकीकृत जीएसटी का संग्रह 93,621 करोड़ रुपए रहा। पश्चिम एशिया में गजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कल 6,40,000 बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक टीका लगाने का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। इस दौरान लगातार 3 दिन तक कम से कम 8 घंटे संघर्ष विराम रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के 90% बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक दी जाएगी। 2024 पैरालंपिक के चौथे दिन भी भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में 2.04 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बीच प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके पेरिस पैरालंपिक का अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। प्रीति ने इससे पहले महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। महिला बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पैरा शटलर तुलसीमती मुरुगेसन ने भारत की मनीषा रामदास को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।